प्यारे विद्यार्थियों, श्री बालाजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान में दूसरी इकाई के बारे में अध्ययन कर रहे थे। दूसरी इकाई के दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं, वेतन भत्ते, इनके बारे में अध्ययन किया है। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुने, नोट्स बनाएं, याद करें। राष्ट्रपति की शक्तियां, शक्तियां या कार्य एक ही बात होता है। शक्तियां कहो, चाहे कार्य कहो या अधिकार कहो। तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। देश का प्रथम नागरिक होता है। वह राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक सामान्यकालीन शक्ति और दूसरी संकटकालीन या आपातकालीन शक्ति। सामान्यकालीन शक्तियां या सामान्यकालीन कार्य अधिकार और दूसरा है आपातकालीन शक्तियां या कार्य अधिकार। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां अधिकार आते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में प्रथम शक्ति आती है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। दूसरी आती है इसमें विधायी शक्ति, कानूनी शक्ति। तीसरी सामान्यकालीन शक्तियों में आती है वित्तीय शक्तियां। और चौथी सामान्यकालीन शक्तियों में आती है न्यायिक शक्तियां। तो सामान्यकालीन शक्तियों को चार बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। पहली है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है। संघ का शासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। वह प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, भारत के महान्यायवादी, विदेशों में राजदूत एवं राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करता है। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। संघ के स्तर के प्रमुख आयोगों जैसे UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 72 यानी 72 राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार प्रदान करता है, जिसके अनुसार वह किसी व्यक्ति के दंड को, जिसमें मृत्यु दंड भी शामिल हैं, क्षमा कर सकता है, विलंबन, निलंबन अथवा लघुकरण कर सकता है। इन सभी के साथ राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति भी होता है। उसे मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे प्रदान करें। अनुच्छेद 78 में यह बात कही गई है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं उसे प्रदान करें। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति की यह सारी शक्तियां औपचारिक ही है। वह ये सब कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है, लेकिन विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति को विवेक के अनुसार निर्णय करना पड़ता है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन वह हर किसी को ऐसे नियुक्त नहीं कर सकता है। संसदीय व्यवस्था में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही वह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन जब चुनाव बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, ऐसे में अनेक बार राष्ट्रपति राजनीतिक आधार पर फैसला लेते हुए दिखते हैं। 1998 में चुनाव उपरांत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सबसे बड़ा था एवं बहुमत के करीब था, फिर भी राष्ट्रपति ने गठबंधन के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, तथा इससे भी बढ़कर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिन के भीतर लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने को कहा। इसके विपरीत 1991 के चुनाव उपरांत नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार को राष्ट्रपति से ज्यादा सहूलियत प्राप्त हुई, जबकि वह अल्पमत सरकार थी। इस प्रकार कार्यपालिका शक्तियों में नियुक्तियां महान्यायवादी मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्तियां उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति को शामिल किया जाता है। दूसरी सामान्यकालीन शक्ति में है विधायी शक्ति। संसदीय व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद का भी अंग होता है। संसद का भी राष्ट्रपति एक अंग होता है। संसद के अंग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को शामिल किया जाता है। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की, और संसद के सदन पूछे तो दो ही सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इस नाते वह अनेक कार्य करता है, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते अनेक कार्य करता है, जिसे राष्ट्रपति की विधायी कार्य कहा जाता है। विधायी कार्य कानूनी कार्यों में क्या क्या आते हैं, वह संसद का सत्र बुलाता है, संसद का सत्र बुलाता है और उसका सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व ही भंग कर सकता है, यह भी उसके पास कानूनी शक्ति है। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 85 में है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 85 अनुच्छेद 85 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है, ये भी उनके पास विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी विधायी शक्तियों में आता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए हुए व्यक्ति होते हैं। वह अंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में भी मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम अर्थात कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाए। अनुच्छेद 111 में ये बात इस बात का उल्लेख मिलता है कि कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम अर्थात कानून नहीं बनता तब तक है जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाए। राष्ट्रपति ऐसे किसी साधारण विधेयक को संसद को लौटाकर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन यदि संसद इसे दोबारा पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजे तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर को बाध्य होता है। अतः इसे राष्ट्रपति का सीमित अथवा निलंबनकारी निषेधाधिकार कहते हैं। संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं है जिसके अंदर ही उसे विधेयक पर फैसला लेना पड़ता हो। वह विधेयक पर न हस्ताक्षर करे और न ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद को भेजे, बल्कि अपने पास ही लंबित रख लें, ऐसी स्थिति में यह विधेयक पारित नहीं हो सकेगा। इसे राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो कहते हैं। कुछ कानून कुछ विधेयक होते हैं वह विधेयक न हस्ताक्षर करे और न ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद को भेजे। कोई विधेयक या प्रस्ताव पर न तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करें और न ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजें, बल्कि अपने पास से लंबित रख लें, तो ऐसी स्थिति में यह विधेयक पारित नहीं हो सकेगा। इसे राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार अथवा पॉकेट वीटो कहते हैं, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने डाक बिल के संदर्भ में किया था। इसके अलावा जब संसद के किसी भी सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कानून के समान ही प्रभावी होता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 में दिया गया है। यह अध्यादेश संसद के पुनः समवेत होने पर उसके सामने रखा जाएगा, और यदि 6 सप्ताह में संसद उसे पारित कर विधि न बनाए, तब वह अध्यादेश समाप्त माना जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति को संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख होने के साथ साथ अनेक व्यवस्थापिका शक्तियां भी प्राप्त हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हमने चर्चा की हैं। अब तीसरी सामान्यकालीन शक्तियों में आती हैं वित्तीय शक्तियां। भारतीय राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद से समक्ष संघ का वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। संसद के समक्ष वार्षिक आय व्यय का विवरण राष्ट्रपति प्रस्तुत करेगा, यह अनुच्छेद 112 में दिया गया है। अनुच्छेद 113 के तहत बिना राष्ट्रपति की सिफारिश की संसद से किसी प्रकार की धन की मांग नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 117(1) में वित्त से संबंधित कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तथा किसी विधेयक के पारित हो जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना होगा। उस पर संसद का कोई सदन तब तक विचार नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति ने उस पर विचार देने की सिफारिश न की हो। राष्ट्रपति की अनुमति से पूरक, अतिरिक्त तथा अन्य मांगे पेश की जाती हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों को वह संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही आयकर और अन्य करों से प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में बंटवारा भी करवाता है। इस प्रकार सामान्यकालीन शक्तियों में वित्तीय शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जिसमें हमने चर्चा की है। सामान्यकालीन शक्तियों में फोर्थ शक्ति है न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 72(72) के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी सजा पाए हुए व्यक्ति को समाधान दे सके। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति सजा पाए हुए व्यक्ति को समाधान दे सकता है, क्षमा कर सकता है, ये संविधान के अनुच्छेद 72 में बताया गया। तो राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 72 में दी गई है। क्षमा प्रदान करने, न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने, दंड को कम करने या दंड को बदलने की शक्ति प्राप्त है। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति 3 प्रकार के मामलों में कर सकता है। पहला, उन सभी न्यायालयों में जहां दंड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो। दूसरा, उन सभी मामलों में जहां सजा ऐसे अपराधों के लिए दिया गया हो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, उन सभी मामलों के लिए जिसमें मृत्युदंड मिला हो। राष्ट्रपति की समाधान संबंधी शक्ति का राज्यों के राज्यपालों और सैनिक न्यायालयों की सैनिक अधिकारियों को समाधान संबंधी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के परामर्श से करेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति को चार बिंदुओं के आधार पर सामान्यकालीन शक्तियां दी गई हैं, जिसमें हमने पहली कार्यपालिका शक्तियां संबंधी चर्चा की हैं, दूसरी हमने विधायी शक्तियां संबंधी, तीसरी वित्तीय शक्तियां और चौथी न्यायिक शक्तियां। इस सामान्यकालीन शक्तियों में जो मुख्य रूप से अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं वो प्रश्न लिखें। पहला प्रश्न लिखें, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में दी गई है। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में दी गई है। दूसरा प्रश्न लिखें, राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार कोष्टक में लिखें, पॉकेट वीटो किसे कहते हैं। राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न लिखें, अनुच्छेद 85 में किसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 85 में क्या उल्लेखित है या किसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आज हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा की है। अगली क्लास में हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।